पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से खोई बच्ची क्लियो स्मिथ सही सलामत मिली। भारत में छोटी दिवाली पर शुरू होगा नया टीकाकरण अभियान। और खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहुंचाया अपने चैंपियंस लीग समूह के शिखर पर। और अब खबरें विस्तार से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 4 साल की गुमशुदा बच्ची क्लियो स्मिथ सही सलामत वापस मिल गई है। नन्ही क्लियो पुलिस को कार्नवॉन शहर में एक बंद घर में मिली। ज्ञात हो कि उनका परिवार इसी शहर के मुहाने पर कैंपिंग करने गया था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैकगॉवन का कहना है कि अब भी इस हादसे की जाँच पूरी नहीं हुई है और एक 36 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।
We're so pleased that little Cleo has been taken back to them. So it's just an exciting, uplifting, wonderful day. And I'm sure we're very proud. Just an exciting day for all of us.
University of Sydney के मनोविज्ञान विभाग की सीनियर लेक्चरर सेलीन वैन गोल्डी का कहना है कि क्लियो की कम उम्र के बावजूद उनके बताए विवरण की इस जांच में अहम भूमिका होगी।
I think it's very important to emphasize that unlike general beliefs, children can be very able to provide accurate details of events that even happened 18 days ago. So just because they're very young doesn't mean that there's no memory. And as long as we ask the right questions and we ask them in an appropriate way, we are able to get very accurate and comprehensive accounts from even very young children.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और विपक्ष नेता एंथनी एल्बनीजी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने क्लियो की ढूंढ जारी रखी। क्रिमिनोलॉजिस्ट टेरी गोल्डवर्दी ने 9 नेटवर्क को बताया कि बहुत मुमकिन था कि ये बच्ची बच नहीं पाती, पर शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
To potential homicide or kidnapping investigation, and the benefit they had, I think, is that this took place in a fairly remote area, so it limited, in reality, the suspect pool. They've had great media coverage as a very good media campaign, and that is one of the major investigative tools you can use. And technology has also played a major role in assisting the police.
मनोवैज्ञानिक माइकल कार्ग्रेग ने 7 के सनराइज कार्यक्रम के दौरान कहा है कि बहुत मुमकिन है कि ये बच्ची सदमे से गुजरे।
19 days away from your mum and dad is going to leave you feeling confused, scared, shocked, lonely, and probably a tad insecure about the future. We don't, of course, know what happened to her during those 19 days, so that will play into it as well. The big concern that I have now is they need to be on the lookout for childhood PTSD, where you have constant scary thoughts, nightmares, flashbacks.
New South Wales के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने पोर्क बैरलिंग की चिंताओं के बीच अनुदान बांटने के तरीके की समीक्षा के आदेश दिए हैं। पोर्क बैरलिंग का मतलब सरकारी पैसे का इस्तेमाल उन योजनाओं के लिए करना है जिससे मतदाताओं को खुश किया जा सके। इस समीक्षा के जरिए ये पता किया जा सकेगा कि राज्य में अनुदान देने के कार्यक्रम को किस तरह नियोजित किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जनता के पैसे को सही ढंग से खर्चा जा रहा है।
I think it's very good practice for the New South Wales government or any government to review their processes from time to time. When it comes to grants administration in our state, that hasn't been looked at, I think, in terms of administration since 2010. I think it's important that there's confidence in the public in relation to the expenditure of taxpayer funds.
ये समीक्षा प्रीमियर और कैबिनेट के नेतृत्व में अगले साल के अप्रैल महीने तक पूरी होगी। उधर विक्टोरिया ने आज लगातार दूसरे दिन भी 941 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में आज 8 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। फेडरल विपक्ष नेता एंथनी एल्बनीजी 6 महीने में पहली बार विक्टोरिया पहुंचे हैं, जहां वे प्लम्पटन के गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने दिवाली से पहले विक्टोरियाई निवासियों के लिए संदेश भी दिया। दिवाली हिंदू, जैन, सिख और कुछ बौद्ध समुदायों का प्रमुख त्योहार है।
दिवाली commemorates the victory of lightness over darkness. And what we have here in Victoria is just that, a sense of optimism as Victoria opens up again. And that sense of optimism is something that I want to bring to government after the next election.
विक्टोरियाई लिबरल सांसद टिम स्मिथ ने तय सीमा से दोगुने से भी अधिक मात्रा में नशा करके गाड़ी चलाने को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया है। श्री स्मिथ ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए शनिवार रात को हॉथॉर्न के एक घर को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था, जिसमें एक बच्चे का कमरा बाल भर की दूरी से बच गया था। उनकी सांस की जांच में रीडिंग 0.131 की आई थी, जिसके चलते उनका ड्राइविंग लाइसेंस 12 महीनों के लिए रद्द कर दिया गया है। उन्होंने 3AW मेलबर्न के साथ एक साक्षात्कार में अपने व्यवहार को शर्मनाक और बेवकूफी भरा बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने नशे की आदत को लेकर उन्होंने अपने GP से बात की है और वे फिर कभी नशा न करने की कसम भी खाते हैं।
So sorry for the embarrassment and the harm that I have caused my family, my party, my leader. It was an appalling lapse of judgment. I'm just so incredibly sorry.
उधर न्यू साउथ वेल्स ने आज 190 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आज 4 मृत्यु भी दर्ज की हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 309 मरीज इस समय अस्पताल में हैं, जबकि राज्य में 68 लोग गहन चिकित्सा केंद्र में हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑस्ट्रेलिया के दवा नियामक ने यह उम्मीद जताई है कि महीने के अंत तक प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए फाइजर का टीका उपलब्ध कराया जा सकता है, पर दूसरे देशों में यह काम और तेजी से चल रहा है। अमरीका में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने फाइजर टीके की बच्चों की खुराक को मंजूरी पहले ही दे दी थी। देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वयस्कों की खुराक की 1/3 खुराक को मंजूरी दी थी, पर अब सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस पर सलाह दी है कि यह टीका किसे मिलना चाहिए। यह घोषणा CDC के निदेशक डॉक्टर रोशेल विलेंसकी ने की।
Today is a monumental day in the course of this pandemic, and one that many of us have been very eager to see. Ever since your vote on December 12th last year, recommending COVID-19 vaccination for those 16 and older, we have been asking when we will be able to expand this protection to our younger children. In the nearly 12 months that have passed since that vote, we have learned a tremendous amount, both about COVID-19 disease and the vaccines that combat it.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ग्लासगो में जलवायु शिखर वार्ता से अब निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री मॉरिसन और ऊर्जा मंत्री एंगस टेलर ने चलने से पहले यह आश्वासन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों को अपनी कार्बन एमिशन कम करने में और आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा। श्री मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में छोटे टापू देशों को जलवायु से रक्षित बुनियादी ढांचे बनाने में भी मदद करेगा। और अब खबरें भारत से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छोटी दिवाली के दिन हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत अब घर घर जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कोरोना और टीकाकरण की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि खराब प्रदर्शन वाले जिलों में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए अगले महीने के दौरान हर घर दस्तक अभियान भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को घातक वायरस से बचाने के लिए पूर्ण टीकाकरण प्राप्त कराना है। गौरतलब है कि G20 सम्मेलन और COP26 से भारत लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को भारतीय समय से दोपहर 12 बजे ऑनलाइन मीटिंग कर कोविड-19 टीकाकरण वाले जिलों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। उधर भारत में कोविड-19 के मामले अब घट रहे हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,00,000 से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के 10,423 नए मामले सामने आए हैं। इस एक दिन में 15,021 मरीज ठीक भी हुए हैं और इस दौरान 443 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवाई है। अब तक 3,36,00,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.44 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में नया जीवन दान दिया है। उनके स्टॉपेज टाइम के गोल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अटलांटा के साथ मैच ड्रॉ होने से बचा लिया। रॉबर्ट लेवनडॉस्की ने अपने चैंपियंस लीग के 100वें मैच में हैट्रिक गोल दागे। बायरन म्यूनिक ने बेनफिका को 5-2 से करारी शिकस्त दी। उधर चेल्सी ने स्वीडन में मैल्मो को 1-0 से हरा दिया। और अब अंत में एक नज़र कल यानी गुरुवार यानी दिवाली के दिन को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप छाई रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल तेज धूप छाई रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल दिन ढलने के साथ बारिश धीमी होने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल दिन भर बारिश रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी छिटपुट बूंदाबांदी के आसार है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में तेज बारिश के साथ तूफान की संभावना जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 37 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप बने रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।